राधमाधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव यशोदा नंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी यशोदन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी यशोदानंदन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधा जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा। जय गौरनिताय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय। प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की, इस्कॉन बीबीटी फाउंडर आचार्य शिल प्रभुपाद की, धामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की, उपस्थित भक्त वृंद की जय, उपस्थित भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। होम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे वत्सासुर के वध पर, किस तरह से वत्सासुर का वध हुआ। भगवान ने एक गाय की हत्या की, वत्स बछड़ा जो गाय का रूप लेकर आया था भगवान ने उसकी भी हत्या की। वैसे शास्त्रों में कहा जाता है कि गाय की हत्या नहीं करनी चाहिए, बहुत बड़ा पाप माना जाता है, लेकिन यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि स्वयं भगवान ने इसको किया। तो इसके क्या अर्थ है, क्यों भगवान ऐसे कार्य करते हैं? दरअसल भगवान ने ये दिखलाया कि अगर कोई व्यक्ति किसी चोले में आता है, अर्थात छुप कर आता है, छलावा करता है, तब फिर उसको मारना चाहिए। जैसे भगवद गीता में भी भगवान वर्णन करते हैं कि अगर कोई आतताई है तो आतताइयों को मारना कोई अपराध नहीं है। तो क्योंकि ये भले ही गाय के शरीर में था, लेकिन गाय नहीं है, इस कारण से इनको मारना ये उचित था। तो फिर कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार भगवान अपनी बाल लीलाएं करते हैं, और उन बाल लीलाओं में कैसे गोपियों के वश में रहते हैं, किस प्रकार से उनकी सेवा करते हैं, और कैसे यशोदा माता और नंद महाराज वो कितना प्रेम करते थे भगवान श्री कृष्ण से, जिसके कारण वो जाने नहीं देना चाहते थे उनको जंगल में बछड़ों के साथ। लेकिन फिर जब कृष्ण ने बहुत जिद की और ये कहा कि मैं जाना चाहता हूँ, और बाकी ग्वाल बालों ने भी, गोपों ने भी ये कहा, तब फिर नंद महाराज मान गए, यशोदा माता को भी मानना पड़ा। और फिर उस समय भगवान ने भक्तों के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण सिद्धांत सबको दिया, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो व्यक्ति धर्म का रक्षण करता है, धर्म का पालन करता है, धर्म उसका रक्षण करता है। इसलिए ऐसा व्यक्ति जो धर्म का रक्षण करता हो, धर्मो रक्षति, उसे घबराना नहीं चाहिए अपने रक्षण के लिए, क्योंकि स्वयं वो ही धर्म उसकी रक्षा करेगा। इस पर हम लोगों ने कल विस्तार से चर्चा की थी। और फिर कैसे ये असुर वत्सासुर, जिस जो कि अपने पूर्व जन्म में प्रमिल नाम का असुर था, कैसे उसने वशिष्ठ मुनि के आश्रम में जाकर एक भेष धरा, एक छल किया, और छल के द्वारा, कपट के द्वारा वो प्रयास कर रहा था कि नंदिनी को ले जाए, गाय को ले जाए, लेकिन फिर उस गाय ने ही उसे श्राप दिया, उसे एक वत्स बनाया, एक बछड़ा बनाया, लेकिन फिर ये वरदान भी दिया कि आगे चलकर भगवान कृष्ण तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो फिर ये वत्स, ये असुर भगवान की गायों में मिल गया, और फिर भगवान ने ये जानकर कि ये वत्स यहाँ आ गया, ये असुर है, ये गाय नहीं है, और उन्होंने उसका वध किया। और जब वध हो गया, तब फिर बड़े आराम से सारे जो गोप बाल थे वो बड़े हर्षित हो उठे और बहुत वाह वाह करने लगे, जय जय करने लगे कृष्ण की, और फिर सब अपने अपने कार्यों में चले गए। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये भगवान ने कब किया था। तो देखिए, असुर को भी मारना, इसका समय क्या होना चाहिए, भगवान के लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि अगले श्लोक में वो वर्णन करते हैं कि तौ वत्स पालको भूत्वा सर्वलोकैक पालको। असुर को मारने के बाद कृष्ण तथा बलराम ने अपना सुबह का नाश्ता किया। तो देखिए, सुबह का नाश्ता करने से पहले ही एक आध खत्म कर देते थे, और फिर दोपहर के नाश्ते तक एक दो, और फिर वापस आते आते और एक को मार देते थे। तो ऐसे कई असुरों का वध, जिनका वर्णन करना भी संभव नहीं है, भगवान की हर लीला का वर्णन तो नहीं हो सकता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में भगवान हर क्षण लीला करते हैं। भगवान का हर कार्य ये दिव्य लीला है। जब वो चलते हैं तो वो दिव्य लीला है, वो अगर पेड़ों से फल तोड़ते हैं तो वो दिव्य लीला है। आचार्य उसका बड़े विस्तार में वर्णन करते हैं, उनको देखकर अगर पेड़ झुक जाते हैं तो वो दिव्य लीला है। तो इसलिए भगवान की लीलाओं का, सभी लीलाओं का वर्णन करना संभव नहीं है। कुछ एक लीलाओं का वर्णन सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में किया है। तो ऐसे वत्सासुर का वध हुआ। हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि वत्सासुर ये एक ऐसी मानसिकता का सूचक है जो अभी परिपक्व नहीं हुई है, अभी बच्चा है, अपरिपक्व है, और ऐसी अपरिपक्व मानसिकता हमारी भक्ति में एक बहुत बड़ी बाधा है। कैसे ये बाधा हो सकती है? क्योंकि जब तक हम परिपक्व नहीं होते हैं भक्ति में, तो जो भक्ति के नियम, भक्ति के जो संस्कार, भक्ति के जो अन्य अंगों का हम पालन करते हैं, उनके महत्व को नहीं समझ पाते। हम भक्ति करते हैं, हम उस उन अंगों का भी पालन करते हैं, उन संस्कारों को ग्रहण भी करते हैं, लेकिन उसके ठीक से अर्थ को नहीं समझ पाते, अपरिपक्व अवस्था में रहते हैं, उसकी परिपक्व अवस्था या उसकी संपूर्ण अवस्था तक नहीं पहुंच पाते। और ये कारण है कि जिसके द्वारा हम लोग भक्ति की शुरुआत में तो बड़े उत्साह में होते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद हमारा ये उत्साह समाप्त हो जाता है, हमारे अंदर भक्ति करने की जो तीव्रता है वो कम हो जाती है, और तो और हमारे अंदर कृष्ण के प्रति जो विश्वास, जो निष्ठा है वो भी कम हो जाती है। हम ये मानने लगते हैं कि भक्ति ये तो हमारे दिन की एक दिनचर्या है, या फिर एक कुछ समय हमें भक्ति में देना चाहिए, भक्ति के कार्यों में, लेकिन हम ये मानने के लिए कतई तैयार नहीं होते कि भक्ति ही सारे जीवन के लिए ये एक ही कार्य है, अर्थात भक्ति सर्वश्रेष्ठ कार्य है या सबसे महत्वपूर्ण कार्य हमारे जीवन के लिए है। और इसका कारण अपरिपक्वता। ये अपरिपक्वता न केवल हमें भक्ति से गिराती है, हमारा पतन करती है, साथ ही साथ भक्ति में रहते हुए भी कई मतभेदों को उत्पन्न करती है। उदाहरण के लिए, कभी कभी भक्तों में आपस में मतभेद हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, कुछ मन मुटाव हो जाते हैं, तो इसका कारण क्या है? अपरिपक्वता। हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि भक्ति ये कितना महत्वपूर्ण कार्य है। हम कुछ दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे कि हम लोग अपनी दिनचर्या में ये भूल जाते हैं कि श्रील प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है, हम उनके प्रति कृतज्ञ नहीं हो पाते ठीक से, और इस कारण से, इस अपरिपक्व भाव के कारण, जहां परिपक्वता नहीं है, जहां हमने भक्ति को ठीक से समझा नहीं है, तीव्रता नहीं आ पाती है, और फिर हम कई सालों तक भक्ति करते हैं लेकिन पाते हैं कि थोड़ा बहुत अंतर आया, क्योंकि इतने वर्ष हमने जप किया, भक्तों का संग किया, लेकिन फिर भी हृदय परिवर्तन नहीं हुआ। आप लोगों को याद होगा, हमने जब से ये सत्र प्रारंभ किया है तब से हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भक्ति का अर्थ है हृदय परिवर्तन। अगर हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा है और हम भक्ति में लगे हुए हैं, तो इसका अर्थ यह है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। जैसे समझिए कि आप किसी कार्य को कर रहे हैं लेकिन उसका फल नहीं आ रहा, आप करे जा रहे हैं। उदाहरण के लिए, जैसे ये जमीन में कुछ गंदगी लगी है और हम लोग एक कपड़ा लेकर उसको पोछे जा रहे हैं, लेकिन वो गंदगी निकल ही नहीं रही है। और अगर कोई व्यक्ति कहे नहीं, मैं पोछता रहूंगा, कभी तो निकलेगी, तो उसको देखना चाहिए कि क्यों इतना पोछने के बाद भी वो गंदगी नहीं निकल रही है। इसका कारण है, या तो वो ठीक से नहीं कर रहा है, या तो कपड़ा गीला नहीं है, या फिर थोड़े साबुन की आवश्यकता है, कुछ तो है, कुछ तो कमी है जिसके कारण वो गंदगी नहीं जा रही है, अन्यथा गंदगी को जाना चाहिए। इसका अर्थ ये हुआ कि जो फल हमें मिल रहा है, अर्थात जो फल मिलना चाहिए, वो अगर नहीं मिल रहा तो हमारा मार्ग या हमारा पद्धति सही नहीं है। इसी तरह अगर हम कई वर्षों से भक्ति कर रहे हैं लेकिन हमारा हृदय परिवर्तन नहीं हो रहा, वही पत्थर का पत्थर है, वही दोष भरे पड़े हैं, वही अनर्थ भरे पड़े हैं, कोई प्रेम नहीं उत्पन्न हुआ, न भक्तों के प्रति, न भगवान के प्रति, न भगवान के नाम के प्रति, तब फिर जानना चाहिए कि मार्ग तो सही है, क्योंकि मार्ग में कोई त्रुटि नहीं है, ये मार्ग आचार्यों के द्वारा दिया गया है, लेकिन उसका पालन करने में हमारी तरफ से कोई गलती हो रही है, और ये होता है अपरिपक्वता के कारण। चीजों को या पद्धति को, नियमों को उनके सही रूप में न समझने के कारण, और इसी कारण से हम लोग भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाते। तो एक उदाहरण हम देना चाहते थे पंच संस्कारों का, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे, अवाप्त पंच संस्कारो लब्ध्वा द्विधा भक्ति का, साक्षात कृत्य हरि तस्य धामनी नित्यम प्रमोदते। ये बताया जाता है कि जब कोई व्यक्ति ये पांच संस्कार करता है, अवाप्य पंच संस्कारों, तो वो द्विधा दोनों प्रकार की भक्ति को प्राप्त कर सकता है। कौन सी है दो प्रकार की भक्ति? वैदी भक्ति और रागानुगा भक्ति। तो इन दोनों भक्तियों को प्राप्त करने के लिए हमें पंच संस्कारों की आवश्यकता होती है। दरअसल जब हम भक्ति की शुरुआत श्रद्धा से करते हैं और फिर साधु संग होता है, तो भजन क्रिया करनी होती है, और भजन क्रिया के पहले ये पंच संस्कार आते हैं। कोई व्यक्ति भजन क्रिया कर नहीं सकता अगर ये पंच संस्कार उसने नहीं किए हैं। तो साधारण दृष्टि में पंच संस्कारों को देखें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये पंच संस्कार क्या हैं? तपः पुंद्रम तथा नाम मंत्र यागश्च पंचम अमीहि पंच संस्कार परमय कांति हे तवः। ये पांच संस्कारों को बताया गया है, तपः, पुंद्र, नाम, मंत्र और याग। ये पांचों संस्कार एक भक्त को, एक साधक को करने होते हैं, जिसके द्वारा वो भक्ति में आगे बढ़ता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि पांच संस्कार साधारण रूप में, अर्थात जैसे सब जानते हैं, वो क्या हैं, और फिर हम लोग देखेंगे कि इसका गूढ़ अर्थ क्या है, इसको कैसे समझना चाहिए। अर्थात इस उदाहरण से हम लोग देखेंगे कि कैसे भक्ति में अपरिपक्वता के कारण हम चीजों को सही रूप में समझ नहीं पाते। तो ये पंच संस्कार हैं। सबसे पहला इसमें संस्कार आता है तप। अब तप साधारणतः ऐसे बताया जाता है कि जैसे शरीर पर कुछ चिन्हों को धारण करना, उसको तप कहते हैं। कई संप्रदायों में इसको शरीर पर परमानेंटली पक्का कर दिया जाता है। खास करके रामानुज संप्रदाय में शंख, चक्र, गदा, ये शरीर पर गोद दिए जाते हैं, इसको तप कहते हैं। तो किन्हीं चिन्हों को शरीर पर धारण करना, इसको तप कहा जाता है साधारण रूप में। चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों को ऐसा करने से मना किया है। हमें कोई आवश्यकता नहीं है उस शरीर पर चिन्हों को गोदने के लिए। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने यह कहा है, रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में लिखते हैं, कि हमें चंदन के द्वारा या गोपी चंदन के द्वारा अपने शरीर पर भगवान के नामों को लिखना चाहिए, या भगवान का स्मरण उसके द्वारा करना चाहिए। यही हमारे लिए तप है। तो ये होता है तप, सबसे पहली चीज पांच संस्कारों में, जहां अलग अलग संप्रदायों में अलग अलग चिन्हों को अपने शरीर पर गोदा जाता है। फिर दूसरा आता है पंच संस्कारों में, वो है पुंद्र। पुंद्र अर्थात तिलक जो हम लोग लगाते हैं। तो साधारण इसकी समझ ये है कि इसमें विशेषतः दो लाइंस होती हैं, दो चिन्ह होते हैं, और लोग बतलाते हैं अलग अलग स्थानों पर कि या तो ये भगवान के मंदिर का सूचक है, नहीं तो भगवान के चरण कमलों का सूचक है। तो इसलिए हम इनको अपने मस्तक पर धारण करते हैं। तो ये दूसरा संस्कार है, ये ध्यान रखिएगा, ये कोई साधारण बातें नहीं है। तिलक लगा लेना ये एक संस्कार है, और इसका क्या अर्थ है, गहन अर्थ, गूढ़ अर्थ, हम आगे चलकर देखेंगे। तीसरा संस्कार होता है नाम। नाम अर्थात गुरु जब देखते हैं कि ये जो मेरा शिष्य है ये तप कर चुका है, इसको तप हो गया, इसने स्वीकार कर लिया, तिलक विलक लगा रहा है, पुंद्र हो गया है, तब फिर वो नाम देते हैं। नाम अर्थात या तो कान में एक मंत्र कहा जाता है, या फिर एक मंत्र देकर उसको एक नया नाम दिया जाता है, अर्थात दीक्षा, जिसको हम लोग जानते हैं दीक्षा के रूप में। दीक्षा हम लोगों की होती है। दीक्षा ये वैसे तो बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है भक्ति का, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग एक परंपरा में जुड़ते हैं और परंपरा से जुड़ने मात्र से कृष्ण से जुड़ जाते हैं। तो दीक्षा के प्रक्रिया के द्वारा, दीक्षा में यज्ञ के द्वारा गुरु हमें परंपरा से जोड़ते हैं, इसलिए ये बड़ी ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चौथी चीज पंच संस्कारों में होती है मंत्र। मंत्र अर्थात कुछ समय बाद जब गुरु देखते हैं कि ये व्यक्ति योग्य है तो उसको मंत्र दिए जाते हैं। इस्कॉन में इसे ब्राह्मण दीक्षा कहते हैं, अर्थात दूसरी दीक्षा, जहां पर गुरु एक मंत्र देते हैं, ऐसा मंत्र जो व्यक्ति के कृष्ण प्रेम को और बढ़ाता है। क्योंकि ये मंत्र एक ऐसे रूप में, एक ऐसे भाव में दिया जाता है जिससे व्यक्ति का जो भाव विग्रह की तरफ है, जिस प्रकार का भाव है, वो बढ़ जाता है और उसका उसके लिए बड़ा सरल हो जाता है भगवान के नाम में रुचि बढ़ाना। तो इसीलिए इसको मंत्र कहते हैं। और पांचवा संस्कार होता है याग। याग अर्थात अर्च विग्रह सेवा, जो हम लोग मंदिरों में करते हैं। तो जब मंत्र मिल जाता है तो व्यक्ति योग्य हो जाता है याग के, अर्थात अर्च विग्रह की सेवा करने के। और ये पांचों संस्कार हमें भक्ति में आगे बढ़ाते हैं। तो ये साधारण दृष्टि से अगर हम देखें तो ये पांच संस्कार हैं। लेकिन ये पांचों संस्कार जब किए जाते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, जैसे हम लोग तप पुंद्र नाम मंत्र करते हैं और फिर याग भक्ति करने के लिए हम योग्य हो जाते हैं, तो भक्ति में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन इन संस्कारों के बाद भी देखा जाता है कि व्यक्ति भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाता, शिष्य वहीं का वहीं रह जाता है। क्या कारण है? आजकल के समाज में अपरिपक्वता के कारण ये जो पांच संस्कार हैं, इनके मूल उद्देश्य को भूल जाया जाता है। इनका मूल उद्देश्य है, जैसे हम लोग एक एक की चर्चा करेंगे, लेकिन इन सब के द्वारा गुरु और शिष्य के बीच में एक बड़ा प्रेम का संबंध स्थापित होना चाहिए। लेकिन आजकल तथाकथित गुरु हैं जो दीक्षा देते हैं, जो नाम देते हैं, और उसके बाद भूल जाते हैं उनका शिष्य कहाँ है। हमने देखा है बंबई में एक स्थान पर एक व्यक्ति ने 10,000 लोगों को कि 5-7 हजार लोगों को एक साथ दीक्षा दी थी। लाइन से खड़े थे, बहुत बड़ा पंडाल था और लाइन से आते जा रहे थे, ऐसे हजारों लोगों को एक साथ दीक्षा दी। वो तो जानते भी नहीं होंगे कि कौन उनके शिष्य हैं, कहां हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते। तो इस प्रकार से जब ये दीक्षा दी जाती है तो गुरु शिष्य के असली संबंध को स्थापित नहीं कर पाते, और जिसके कारण याग या नाम या मंत्र के असली उद्देश्य को समझ नहीं पाते। तो इसलिए हम सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है आज का दिवस। हम लोग आज अंतिम दिवस इस वर्ष ये चर्चा कर रहे हैं इस सत्र में, तो इसलिए हम लोग जाने कि ये अपरिपक्वता से कैसे दूर जा सकते हैं हम लोग। हमें चीजों के असली उद्देश्य को समझना होता है, जैसे तप। अब साधारण दृष्टि से तप है कि शरीर पर कुछ चिन्हों को धारण करना या गोद देना, लेकिन आचार्य समझाते हैं, विशेष करके श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने बड़ा सुंदर एक निबंध लिखा है इन विषयों पर, पंच संस्कारों पर, और उसमें वो समझाते हैं कि तप का क्या अर्थ है। वो कहते हैं कि बाहरी दृष्टि से तप का अर्थ है चिन्हों को धारण करना, लेकिन असली उद्देश्य क्या है। वो कहते हैं कि गुरु को एक वर्ष तक शिष्य के तप का अध्ययन करना चाहिए। और कैसा तप? तप अर्थात क्या है? वो कहते हैं कि तप का अर्थ है पश्चाताप, प्रायश्चित की भावना, इसको तप कहते हैं। अर्थात जीव को या शिष्य को अपने हृदय में पश्चाताप की भावना होनी चाहिए कि मैं आज तक इस भौतिक जगत में केवल इन भौतिक भोगों में लगा रहा हूं, कभी भगवान की ओर मुड़ा नहीं, उनकी ओर देखा नहीं, लेकिन अब मैं भगवान की ओर जाना चाहता हूं। इसलिए उसे प्रायश्चित करना चाहिए। जब हृदय में पश्चाताप होता है तब प्रायश्चित हो सकता है। अगर हृदय में पश्चाताप नहीं है तो कोई प्रायश्चित नहीं करता है। तो पश्चाताप और प्रायश्चित, ये असली तप है कि जब व्यक्ति को हृदय में पश्चाताप हो कि मैंने आज तक जीवन में केवल पाप ही तो किए हैं। और आप देखिए भक्ति के जीवन के पहले हमने क्या किया है, केवल पाप किए हैं। धन कमाने में लगे रहे, परिवार चलाने में लगे रहे, लोगों को किसी न किसी प्रकार से कुछ ना कुछ धोखा देने में लगे रहे, या और अन्य कार्य हम लोगों ने किए। और सबसे बड़ा पाप हम लोगों ने किया, हम भगवान से दूर रहे, हमने झूठ बोला, हमने धोखा दिया भगवान को। हमने कई बार ये वर्णन किया है कि हम सब ने ये प्रार्थना भगवान से की थी मां के गर्भ में कि हे कृष्ण, मुझे इस अंधकारमय स्थान से बाहर निकालिए, मैं बड़े कष्ट में हूं, और आपको यह वचन देता हूं कि आज के बाद कभी किसी मां का गर्भ स्वीकार नहीं करूंगा। अर्थात यह मेरा अंतिम जन्म होगा, यह मेरा वचन है आपसे। लेकिन जैसे भक्ति विनोद ठाकुर बड़े सुंदर भजन में बताते हैं, भूलिया तुम्हारे संसारे आशिया पे नाना विद व्यथा, जैसे ही जन्म लिया हम भूल गए। तो ये पाप हमने किया है, तो उसका पश्चाताप होना चाहिए हृदय में, उसके लिए प्रायश्चित करना चाहिए, उसको तप कहते हैं। और इस प्रायश्चित को गुरु को एक वर्ष तक अध्ययन करना चाहिए कि कैसा प्रायश्चित ये कर रहा है। और दूसरा, तप केवल शरीर के लिए ही नहीं, मन और आत्मा के लिए भी होना चाहिए। अर्थात ऐसा नहीं है कि इन चिन्हों को हम केवल शरीर पर धारण कर लें, कहीं पर शंख बना लें, कहीं पर गदा बना लें, कहीं पर चक्र बना लें, नहीं। तप होना चाहिए मन के लिए, तप होना चाहिए आत्मा के लिए। मन के लिए तप क्या है? मन के लिए तप ये है कि हम जिन भोग प्रवृत्तियों को, जिन इच्छाओं को, जिन कलुषित इच्छाओं को इस मन में बिठा कर रखे हैं, उसको बाहर निकालना, ये तप है। कि हम जाने कि ये इच्छाएं ये दूषण प्रदान करती हैं, कष्ट देती हैं हमें। हम में से कितने लोग इस बात को समझ पाते हैं? कितने लोग ये प्रार्थना करते हैं रोज भगवान से कि मेरी इन इच्छाओं को दूर करो। इच्छाएं हैं, हम सबके हृदय में इच्छाएं हैं, लेकिन हम में से कितने लोग रोज ये प्रार्थना भगवान से करते हैं कि हे भगवान, ये मेरी दूषित इच्छाओं को दूर करो। आज सुबह हम वर्णन कर रहे थे रुक्मिणी हरण में के प्रसंग में कि किस प्रकार श्रील प्रभुपाद स्वयं भगवान से प्रार्थना किया करते थे कि मुझे माया से बचाओ। वैसे उनको प्रार्थना करने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके संग में रहते हैं, लेकिन हम लोगों को सिखलाने के लिए। तो ये पश्चाताप है, ये प्रायश्चित है। पश्चाताप है कि ये भावना आना कि मैंने पाप किए हैं, और प्रायश्चित ये है उसे पुनः ना करना, इसको प्रायश्चित कहते हैं। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है लेकिन फिर से पाप करता है तो क्या लाभ है? इसका अर्थ यह है कि उसका जो पश्चाताप है वो पूर्ण नहीं है। पश्चाताप के बाद प्रायश्चित होना चाहिए। हमारे हृदय में यह भावना आनी चाहिए कि हमने जो किया वो गलत है, और इसलिए अब उस गलत के लिए हमें जो सजा भोगनी है, जो कार्य करने हैं, उसके लिए हम तैयार हैं। यह प्रायश्चित होना चाहिए। तो यह केवल शरीर के लिए नहीं, इन चिन्हों को हमें अपने मन अपनी आत्मा पर लगाना चाहिए, अर्थात अपने मन को शुद्ध करना चाहिए, अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए, चेतना को शुद्ध करना चाहिए, और तब हम तप के असली अर्थ को समझेंगे। आंतरिक पश्चाताप के बिना आत्मा वैष्णव नहीं बन सकती, भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं। जैसे हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि पश्चाताप होना चाहिए हृदय में। जब तक हृदय में ये पश्चाताप नहीं है, ये प्रायश्चित नहीं है, हम अपने आप को वैष्णव नहीं कह सकते, हम भक्ति मार्ग में चल भी नहीं सकते, क्योंकि ये पहली सीढ़ी है, ये तप, ये पहला मार्ग है, पहली सीढ़ी है कि हम प्रायश्चित करें, हम पश्चाताप करें, हम तप करें, तपना, जलना, ये मानना कि हमने पाप किए हैं लेकिन आज से मैं कोई पाप नहीं करूंगा, ये तप है। और जब तक कोई व्यक्ति तप नहीं करता, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, उसका हृदय अशुद्ध रहता है। अर्थात जब तक हमारे हृदय में पश्चाताप की भावना नहीं आए, तब तक हृदय अशुद्ध है। भक्ति मार्ग में भी सबसे गलतियां होती हैं। ऐसे कोई परम हंस नहीं है हम लोग जो वैदिक भक्ति का पालन कर रहे हैं कि हमसे गलतियां ना हो, लेकिन उन गलतियों को स्वीकारना चाहिए। हम लोगों के साथ ऐसा होता है कि हम गलतियां करते हैं लेकिन उनको स्वीकारने के लिए तैयार नहीं रहते। हम या तो अपनी गलतियां दूसरों पर डालते हैं या उनको स्वीकार ही नहीं करते। और अगर कोई व्यक्ति गलतियों को स्वीकार ही नहीं करता तो फिर पश्चाताप कैसा? पश्चाताप तो तब होगा जब हम ये माने कि गलती है। तो इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि हृदय अशुद्ध रहता है अगर हम इस तप को ग्रहण नहीं करते। तो ये तप का असली अर्थ है। केवल शरीर पर चिन्हों को धारण करना, तिलक लगा लेना या गोपी चंदन से भगवान के नाम को लिख लेना, ये कोई तप नहीं है, ये कोई संस्कार नहीं है, ये बाहरी रूप से संस्कार है, लेकिन इसके आंतरिक मतलब को भी समझना चाहिए, अर्थ को समझना चाहिए, तब हम परिपक्व हो सकेंगे। तो देखिए, एक उदाहरण हमने अभी तप का दिया। तो तप को साधारण दृष्टि में अपरिपक्व अवस्था में केवल यही माना जाता है कि शरीर पर चिन्ह है, लेकिन परिपक्व अवस्था उसको सही ढंग में समझना कि वो पश्चाताप और प्रायश्चित है। दूसरा, पुंद्र। पुंद्र याने ऊर्ध्व पुंद्र हम लोग कहते हैं। ऊर्ध्व पुंद्र याने जो ऊपर की ओर जाता है, ऊर्ध्व गति। ऊर्ध्व पुंद्र को ऊर्ध्व गति माना जाता है। ये आत्मा मन तथा शरीर का प्रकाशमान होना है, अर्थात केवल इन दो लाइनों को ऐसे लगा लेना बड़े अच्छे ढंग से, ये कोई इसका असली उद्देश्य नहीं है। ऊर्ध्वपुंद्र का अर्थ है कि हम ये जाने कि हमें हमारे शरीर को, हमारे मन को, हमारी आत्मा को ज्ञान के द्वारा प्रकाशमय करना है। और क्यों करना है? क्योंकि ऊर्ध्वगति, हमें ऊर्ध्वगति चाहिए। हम ऊपर जाना चाहते हैं, नीचे नहीं जाना चाहते हैं। भगवद गीता में भगवान समझाते हैं कि जो व्यक्ति तमोगुण में है, अधोगच्छन्ति तामसा, तो वो उनका अधपतन, वो नीचे जाते हैं। जो रजोगुण में है, वे लोग जहां हैं वहीं रहते हैं, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण में है वो मध्य में रहते हैं। लेकिन ऊर्ध्व गति किसकी है? जो सत्वगुण में है। और हमें तो इन तीनों गुणों के परे जाना है, हमें तो भगवान की भक्ति करनी है। भगवान की भक्ति ये तीनों गुणों से परे है, ये गुणों के अधीन नहीं है। और भक्ति स्वतंत्र है, इसको कोई आधार नहीं चाहिए कि अगर आपको भक्ति करनी है तो पहले ये करना होगा फिर आप भक्ति करेंगे। नहीं, भक्ति स्वतंत्र है। तो इसीलिए ऊर्ध्व गति, हमें ऊर्ध्व पुंद्र या ऊर्ध्व गति का कदी को मन में रखना चाहिए। और उसके लिए हमें भौतिक जीवन से अनासक्ति आवश्यक है। तो पुंद्र या ऊर्ध्वगति यह हमें क्या सिखलाता है? अपनी चेतना को ऊपर उठाना, इसीलिए उसको कहते हैं ऊर्ध्वगति। जब तिलक लगाते हैं तो कभी कभी हमने देखा है कोई भक्त तिलक लगाते हैं तो तिलक लगाते हुए यहां से दोनों जो द्वार है वो बंद हो जाता है, कभी कभी लगा देते हैं जल्दबाजी में तो यहां बंद हो जाता है। होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऊर्ध्वगति है, ऊपर जाना है। अगर आपने मार्ग बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, तो फिर मध्य तिष्ठन्ति राजसा, फिर यहीं रह जाएंगे। तो ऊर्ध्वगति इसका असली अर्थ क्या है कि अपनी चेतना को उठाना है। तो इसीलिए भौतिक जीवन में अनासक्ति और कृष्ण से आसक्ति के बिना, भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं यह शरीर मृत है। अगर कोई व्यक्ति इस ऊर्ध्वगति को धारण नहीं करता, इस ऊर्ध्वगति के संस्कार को ठीक तरह से नहीं समझता, तो फिर उसका जीवन ये व्यर्थ है। वो व्यक्ति मृत व्यक्ति के समान है, क्योंकि उसकी आसक्ति कृष्ण में नहीं है, उसकी आसक्ति भौतिक चीजों में है, उसकी आसक्ति अपने धन, अपने ऐश्वर्य, अपनी प्रतिष्ठा या अपने समाज, अपने परिवार में है। इसीलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कृष्ण र संसार करी छाड़ी अनाचार, कृष्ण का संसार ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। तो इसीलिए भौतिक जीवन में अनासक्ति होनी चाहिए। तो ये ऊर्ध्वगति या ये ऊर्ध्वपुंद्र का अर्थ है। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी चेतना ये प्रकाशमय होनी चाहिए, ज्ञानमय होनी चाहिए, और इस ज्ञान के द्वारा हमारी आसक्ति कृष्ण में बढ़नी चाहिए, और जिसके द्वारा हमारी चेतना ऊपर की ओर जा सके, इसको ऊर्ध्वगति कहते हैं। तो ये दूसरा संस्कार है। पहला संस्कार तप, दूसरा पुंद्र, और तीसरा नाम। हमने आपको बतलाया कि साधारण अगर उसकी परिभाषा की जाए तो यह एक दीक्षा है कि गुरु एक नाम देते हैं, एक आपको कोई मंत्र दे देते हैं। जैसे इस्कॉन संस्था में जब दीक्षा होती है, यहां पर भी कुछ नियम है। इस्कॉन संस्था के नियम हैं कि पहले 6 महीने जब भक्त आते हैं और वो तैयार हो जाते हैं दीक्षा के लिए, तो उन्हें पहले 6 महीने श्रील प्रभुपाद की प्रणति कहनी होती है, अर्थात उनको अपना गुरु स्वीकारना होता है। फिर 6 महीने के बाद वो कोई, जितने भी इस्कॉन में इस समय काफ़ी श्रील प्रभुपाद के शिष्य हैं जो गुरु के स्थान पर हैं, जो गुरु हैं, तो उनमें से किसी से भी, किसी को भी हम गुरु स्वीकार कर सकते हैं उनकी आज्ञा के बाद। और फिर 6 महीने तक हमें उनकी प्रणति कहनी होती है, और फिर उसके बाद हम दीक्षा के लिए योग्य होते हैं। लेकिन फिर भी गुरु अपने नियम रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम गुरु को बाध्य करते हैं कि बस अब 1 साल हो गया, आपको मुझे दीक्षा देनी ही है। हम दीक्षा डिमांड नहीं कर सकते। डिमांड मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये मेरा अधिकार है, जन्म सिद्ध अधिकार है, नहीं। ये तो गुरु की कृपा है, और कृपा की याचना करनी चाहिए, भिक्षा मांगनी चाहिए, डिमांड नहीं करना चाहिए। हमें जोर देकर नहीं कहना चाहिए कैसे नहीं देंगे, हम देखते हैं, नहीं। ये गुरु की कृपा है। तो इसके इस अर्थ को समझना, नाम जब गुरु देते हैं कि ये आत्मा के शाश्वत स्वभाव को प्रकट करता है, ये नाम जब गुरु के द्वारा ये नाम दे दिया जाता है, हमारी दीक्षा हो जाती है, गुरु मंत्र देते हैं, एक नया नाम दे देते हैं, तो ये नाम, ये मंत्र जो हम जपना शुरू करते हैं, उस समय यही प्रक्रिया हमें हमारे शाश्वत रूप को प्रकट करा सकती है, अगर हम इसे गंभीरता से लें। तो इसीलिए नाम ये केवल एक यज्ञ नहीं है, केवल एक ये कर्मकांड नहीं है, कोई रिचुअल नहीं है कि हम केवल बैठ गए यज्ञ में, हमें हमारे वरिष्ठों ने कह दिया आप दीक्षा ले लो, हम यज्ञ में बैठ गए, गुरु ने हमें नाम दे दिया और हमें सब मिल गया, बस हमारा जीवन सफल, समसिद्धिम स्वयं तोषणम, हो गया सब। नहीं, अभी तो जीवन शुरू हुआ है भक्ति का, ये तो शुरुआत होती है। शुरुआत में हम थोड़ा बहुत गंभीरता दिखलाते हैं और हमारी गंभीरता को देखकर गुरु हमें ये नाम और ये मंत्र, ये दीक्षा देते हैं और तब हमारी भक्ति जीवन की शुरुआत होती है। उसके बाद हमें इतना गंभीरता से भक्ति करनी चाहिए कि हम दूसरों के लिए आदर्श बने, हम प्रचार करें अपने आचरण के द्वारा कि कैसे व्यक्ति को दीक्षा के बाद गंभीर होना चाहिए। लेकिन हम लोग देखते हैं, माफ कीजिएगा, लेकिन बेलगाम में भी इसको देखा जाता है कि दीक्षा लेने के बाद लोग मंदिर में आना कम कर देते हैं। दीक्षा हो गई बस, नहीं, अगर कोई ऐसा मानता है तो ये तो बड़ा गलत है। ये इस तरह है कि कोई कहे कि मुझे कॉलेज में एडमिशन मिल गया, बस अब मैं घर पर बैठूंगा। अरे आप कॉलेज जाएंगे, पढ़ाई करेंगे, तभी तो आपको डिग्री मिलेगी, तभी तो आप डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। तो अभी आपको प्रवेश मिला है भक्ति मार्ग में, भक्ति के कॉलेज में, तो बड़ी गंभीरता से उसके बाद हमें भक्ति में आगे बढ़ना होता है। तो ये नाम का महत्व है। और फिर मंत्र, मंत्र का अर्थ है कि गुरु जब देखते हैं कुछ समय बाद कि ये शिष्य अब योग्य हुआ है और इसका जैसा भाव है भगवान के प्रति, तो उस भाव के अनुसार मैं इसको एक मंत्र प्रदान करता हूं जिससे इसका वो भाव, भक्ति का भाव और बढ़ जाएगा, प्रेम और बढ़ जाएगा। तो कई अक्षरों का, जैसे विशेष करके गायत्री मंत्र होते हैं, अलग अलग प्रकार के गायत्री मंत्र हैं, जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं वो इन मंत्रों का उच्चारण करते हैं अलग अलग प्रकार की। साधारणतः ये मान्यता है कि गायत्री एक ही है, वो एक प्रकार की गायत्री है। गायत्री का अर्थ होता है कि किसी मंत्र को कहने का तरीका, एक विशेष प्रकार के छंद में जब वो मंत्र कहा जाता है तो उसको गायत्री कहते हैं, बस। लेकिन ऐसा प्रचलन हो गया है समाज में कि लोग वो गायत्री के गाने बनाकर, वो कैसेट बनाकर चलते रहते हैं और लोग सोचते हैं गायत्री मतलब केवल वही। नहीं, अलग अलग प्रकार की गायत्रियां होती हैं और वो केवल ब्राह्मणों के द्वारा कही जानी चाहिए, तो फिर इसको मंत्र कहते हैं। और ये क्या करता है, ये जो आराधक है अर्थात जो आराधना कर रहा है, और आराध्य अर्थात कौन है आराध्य, भगवान कृष्ण, तो आराधक अर्थात जीव, आराध्य अर्थात भगवान, और आराधना अर्थात भगवान तक पहुंचने का मार्ग, इसके बीच संबंध स्थापित करता है। ये जो मंत्र है ये हमारे हृदय में ये और रुचि लाता है, जब हमारी गंभीरता बढ़ जाती है और इस मंत्र के द्वारा हम अपने आराध्य देव, इनको विशेष मंत्रों के द्वारा, विशेष शब्दों के द्वारा हम इनका आह्वान करते हैं, इनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हैं या इनको उस भाव में बुलाते हैं। ये जो ब्राह्मण दीक्षित भक्त हैं ये इस बात को बड़ी आसानी से समझ पाएंगे जिसको हम कह रहे हैं, लेकिन जिनकी अभी ब्राह्मण दीक्षा नहीं हुई है तो उन लोगों के लिए समझना कठिन होगा थोड़ा सा, क्योंकि अभी वो उन मंत्रों का जप नहीं करते हैं। तो इसलिए ये मंत्र बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं कि अगर कोई गंभीरता से इसको लेता है, इस दूसरी दीक्षा, इस ब्राह्मण दीक्षा को, तो फिर नाम रुचि उसके हृदय में बड़ी सरलता से आ सकती है। तो ये महत्व है मंत्र का। और एक रह गया ना, चार हो गए ना, याग रह गया। अच्छा, शायद एक स्लाइड बीच में से निकल गई है। तो याग, जब गुरु देखते हैं कि मेरा जो शिष्य है ये बड़ा प्रसन्न है और अब इसने नाम तप पुंद्र और मंत्र प्राप्त कर लिया है और अब ये योग्य हो गया है कि वो भगवान के विग्रहों की सेवा कर सके। तब फिर वो अर्च विग्रह सेवा में उसे लगाते हैं। ये पांचवा संस्कार होता है। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि ये जो याग है ये हमें जीवन के अंत तक करना होता है, क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा हम भौतिक तत्वों को उनके सही रूप में समझ पाते हैं, या दूसरे शब्दों में भौतिक तत्वों को हम लोग सही रूप में इस्तेमाल करना, उपयोग करना अर्च विग्रह की सेवा के द्वारा सीखते हैं। इसीलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि ये जो याग प्रक्रिया है, ये अर्च विग्रह की सेवा है, इसे व्यक्ति को जीवन भर त्यागना नहीं चाहिए किसी भी अवस्था में। क्योंकि वो कहते हैं, क्या कारण है क्यों नहीं त्यागना चाहिए, वो बतलाते हैं कि ये भौतिक प्रकृति, ये माया देवी, ये भौतिक शक्ति, ये बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि भगवान की शक्ति है। और हम लोग इस जगत में रहते हैं, भौतिक जगत में भौतिक तत्वों के बीच में रहते हैं, तो इसलिए स्वाभाविक है कि भौतिक तत्वों में रहते रहते हम हृदय से तो चाहते हैं इन भौतिक तत्वों के परे जाना, लेकिन फिर भी भौतिक तत्वों के मध्य रहते हुए बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, हम इन भौतिक तत्वों में फंस जाते हैं। क्योंकि भौतिक तत्वों को, भौतिक चीजों को हम ठीक से भगवान की सेवा में इस्तेमाल नहीं कर पाते। लेकिन जब हम डीटी वर्शिप करते हैं, अर्च विग्रह सेवा करते हैं, तब हम इन भौतिक तत्वों को बड़ी सरलता से भगवान की सेवा में लगाते हैं, उसके सही उद्देश्य को समझते हैं और उसके द्वारा हम उनसे दूर रह सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, भौतिक तत्वों से भौतिक विषय आते हैं और ये भौतिक विषय जैसे देखना, स्पर्श करना, सुनना, ये सारे हम जब अर्च विग्रह सेवा करते हैं तो उसमें हम उपयोग कर सकते हैं। आचार्य समझाते हैं कि अगर किसी के हृदय में बहुत तीव्र काम वासना है जो जा नहीं रही है, बड़ा विचलित कर रही है, तो उसको अर्च विग्रह सेवा करनी चाहिए। अर्च विग्रह सेवा करने मात्र से उसके हृदय का काम वासना दूर हो जाएगी। ये अर्च विग्रह सेवा का महत्व है, ये याग है, ये अंतिम संस्कार है जो कि हमें भजन क्रिया के पहले करना होता है और इसके बाद असली भजन क्रिया प्रारंभ होती है। फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, फिर निष्ठा, फिर आसक्ति, ये तो आगे की बात है। इसीलिए अर्च विग्रह की सेवा को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने बड़ा महत्व दिया है उस निबंध में। विशेष करके वो कहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन के अंत तक इसको छोड़ना नहीं चाहिए, अर्च विग्रह सेवा करनी चाहिए। तो यहां इस श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में हम सबको बड़ा अवसर मिलता है। दरअसल हम जब पहली बार यहां पर आए थे, 7-8 साल हो गए आए हुए, तो उस समय हमने देखा कि यहां पर सारे जो गृहस्थ भक्त हैं वे लोग अल्टर में सेवा कर रहे हैं, तो हमें बड़ा आश्चर्य हुआ था, क्योंकि हम जिस मंदिर से आए थे उस मंदिर में उस समय गृहस्थों को अंदर नहीं जाने दिया जाता था, अल्टर सेवा उनके लिए नहीं थी, केवल ब्रह्मचारी जाया जाते थे और माताजी तो बिल्कुल अलाउड नहीं अंदर। गृहस्थ फिर भी जो दीक्षित थे, ब्राह्मण दीक्षित, वो कभी कभी अंदर जाया करते थे, लेकिन माताजियों के लिए कोई अंदर एंट्री नहीं थी, नो एंट्री बिल्कुल। और वहाँ के जो पुजारी थे, हेड पुजारी, बहुत स्ट्रिक्ट थे, वो गृहस्थ थे दरअसल, लेकिन इतने स्ट्रिक्ट थे अपनी पत्नी को भी कभी अंदर नहीं जाने दिया उन्होंने, बाहर से ही वो नियम था। तो यहाँ पर आकर हमने देखा तो कितना बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर है कि हम लोगों को अवसर मिलता है भगवान की सेवा करने का, ये संस्कार को करने का। लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है कि कई ऐसे दीक्षित भक्त हैं जिन्होंने ये चारों संस्कार किए हैं लेकिन वो डीटी वर्शिप नहीं करते हैं, अर्च विग्रह सेवा नहीं करते हैं। तो ये मानना चाहिए कि उनकी अपरिपक्वता है, अभी तक परिपक्व नहीं हुए हैं। क्यों नहीं हुए हैं? हाँ, कुछ भक्त ऐसे हैं जो अपने किसी तकलीफ के कारण या किसी और सेवा के कारण इसको नहीं कर पाते हैं, वो ठीक है, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन जो कर सकते हैं, जो आ सकते हैं, वे लोग भी नहीं आते हैं, क्योंकि वे मान लेते हैं कि अब हमारी दीक्षा हो गई, गोलोक का टिकट पक्का है। ऐसा नहीं है। हमें इस याग, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, जीवन के अंत तक ये सेवा करनी होती है, जिसके द्वारा हम भगवान ने जिस स्थिति में हमें रखा है भौतिक तत्वों के बीच में, उनसे दूर रहने का अभ्यास कर सकें। इसलिए हम सबको इसको बड़ी गंभीरता से लेना होगा। तो इसको कहते हैं कि किस तरह से हमें ये पंच संस्कार करने हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि पंच संस्कार प्राप्त करके श्रद्धावान भक्त भजन क्रिया में प्रवेश करता है, जो अंत में भगवान श्री हरि के शुद्ध प्रेम की ओर हमें ले जाती है। तो इसीलिए ये पंच संस्कार बड़े महत्वपूर्ण हैं और हमें इन्हें परिपक्व भाव में करना चाहिए। तो वत्ससुर वध का सारांश, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर दूसरा भी हमने बताया था कल कि ये दो तरह से हम इस पर चर्चा करेंगे, एक अपरिपक्वता जो भक्ति में है और दूसरा बच्चों की मानसिकता। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बहुत सुंदर इसके ऊपर एक आर्टिकल लिखा है कि किस प्रकार से बच्चों को कृष्ण भावना भावित बनाना चाहिए। तो वो कहते हैं कि बच्चों का स्वभाव होता है वो क्रीड़ा प्रिय होते हैं, खेलना चाहते हैं, तो उन्हें दबाना नहीं चाहिए, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि उनके खेल कृष्ण भावना भावित हों। उनके खेलों में ऐसे शब्दों को, ऐसी चीजों को हमें देना चाहिए जिसके द्वारा वो खेले भी लेकिन इन शब्दों को याद भी रखें, लेकिन साथ ही साथ भक्ति की गंभीर प्रक्रियाएं कभी बच्चों को नहीं देनी चाहिए। जैसे कई बार देखा जाता है छोटे से बालक को हाथ में जप माला दे दी जाती है कि आप जप कीजिए, और माता पिता सोचते हैं हमने अपना कर्तव्य पूरा किया। नहीं, श्री प्रभुपाद बताते हैं कि जब तक बच्चा 10 या 12 साल का नहीं हो जाए उसे जप माला नहीं देनी चाहिए। जप कर सकता है लेकिन जप माला पर जप नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि बच्चे जब छोटे होते हैं तो सब चीजों को खेल खेल में लेते हैं, और फिर बड़े होने के बाद खेल उनको पसंद नहीं होता, ये स्वाभाविक है। जो खेल वो 5 वर्ष की उम्र में खेलते हैं वो खेल वो 10 वर्ष की उम्र में नहीं खेलते। तो इसलिए अगर हम उन्हें इस अवस्था में ये माला दे दें, जप करने के लिए कह दें माला पर, तो वो इसको एक खेल समझ लेते हैं। हम लोग सोचते हैं कि बालक मेरा बड़ा गंभीर है, देखो जप कर रहा है, छोटा सा बालक, शुद्ध भक्त है, शायद पिछले जन्म में भक्ति की है। नहीं, वो तो इसे खेल मान रहा है। जैसे आप उसको हाथ में खिलौना देते हैं या अन्य कोई चीज देते हैं, कोई पेंसिल दीजिए, कोई और चीज दीजिए, वो उसको पटकने में आनंद लेता है या उसको हाथ में रखने में आनंद लेता है। कुछ बच्चे होते हैं जो गुड़िया या अन्य चीजों को लेकर सो जाते हैं, उनको पकड़ कर सो जाते हैं, बड़ा आनंद लेते हैं कि मेरा है खिलौना। ऐसे ही वो जपमाला को पकड़ने में आनंद लेता है। और फिर जब थोड़ा सा बड़ा होता है, 10-12 साल का होता है, तो फिर उस खेल को त्याग देता है। और ये अनुभव बंबई में कई भक्तों को अब हो रहे हैं। ऐसे बंबई में एक स्कूल शुरू किया गया, गोपाल्स गार्डन, जहां पर बच्चों को शुरुआत में ही काफी समय जप करने के लिए सिखाया गया। तो ऐसा हुआ कि बच्चे शुरुआत में बहुत अच्छा जप कर रहे हैं, सब लोग बड़े खुश थे कि देखो हम लोग कितने अच्छे हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे देखा बच्चे बड़े हुए और कुछ ऐसे भी हुए कि उन्होंने जप करना ही बंद कर दिया। तो आप सोचिए, जिस समय उन्हें जप करना सिखाया था तब हम लोग ये सोच रहे थे कि आज से जप करेंगे, जीवन के अंत तक जप करते रहेंगे, इसीलिए अभी से सिखाना चाहिए। लेकिन उनमें से कई बच्चों ने आगे चलकर जप करना बंद कर दिया। तो इसीलिए बच्चे ये क्रीड़ा प्रिय होते हैं, ये खेल करते हैं, इसलिए इनको खेल खेल में थोड़ा बहुत सिखाना चाहिए, कथाएं सुनानी चाहिए, श्लोक पठन कराने चाहिए, उसमें कोई गलती नहीं है क्योंकि ये ज्ञान अंदर जा रहा है। लेकिन ऐसी गंभीर प्रक्रियाएं उनसे अभी नहीं करानी चाहिए, तो उन्हें दबाना नहीं चाहिए। ऐसा होता है कि हम लोग अपने परिवार में बच्चों को दबा कर रखते हैं कि कहीं ये कुछ कर नहीं दे, बस हर समय उसके, ऐसा नहीं, थोड़ी स्वतंत्रता देनी चाहिए जिससे बच्चे के प्रति मित्रता का भाव उत्पन्न हो। शास्त्रों में वर्णन है कि जब बच्चा छोटा हो तो उसको कभी मारना नहीं चाहिए, कभी हाथ नहीं उठाना चाहिए उसके ऊपर। फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाए, 5 से 10 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष की उम्र के पहले बच्चे को कभी नहीं, जोर से डांटना भी नहीं चाहिए। 5 वर्ष से 10 वर्ष की उम्र, शायद आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या है, ये सारा आजकल उल्टा हो रहा है, 2 वर्ष के बालक को चमात लगाया जाता है, 3 वर्ष के बालक को मारा जाता है, लेकिन जो कहा गया है वही बतला रहे हैं। और फिर 5 से 10 वर्ष की उम्र में थोड़ा डांटना, थोड़ा सा अगर मारना पड़े, ज्यादा नहीं, हल्का सा, लेकिन जब 10-12 वर्ष का हो जाए बालक, तब उसका मित्र बन जाना चाहिए माता पिता को, फिर उससे मित्रता का भाव, और तब ये बालक चीजों को जिसको आप सिखाना चाहते हैं, संस्कारों को ग्रहण करेगा। अन्यथा ये संभव नहीं है कि वो आपके द्वारा दिए गए ज्ञान को या संस्कारों को ग्रहण करे। और इसीलिए बच्चों को दूषित होने से बचाने का बड़ा ही प्रभावी तरीका है कि उन्हें कृष्ण भावना भावित कार्यों में लगाना चाहिए, और साथ ही साथ सही नैतिकता क्या है इसका मार्ग दिखलाना चाहिए। नहीं तो बच्चे आसपास के समाज से नैतिकता सीख लेंगे, नैतिकता अर्थात कुछ अच्छी चीजें, ये ठीक है, वो ठीक है, बस, लेकिन उन्हें भक्ति की दृष्टि से क्या नैतिक है और क्या अनैतिक है ये हमें सिखलाना चाहिए, और उसके लिए माता पिता को वो आचरण करना चाहिए। कभी कभी माता पिता ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे बिगड़े नहीं, ज्यादा टीवी नहीं देखे, इसलिए वो कहते हैं तुम्हें टीवी नहीं देखना चाहिए, लेकिन खुद 2 घंटा टीवी देखते हैं, तब फिर कैसे जो बच्चा है वो इसको स्वीकार करेगा। इसीलिए माता पिता को पहले वो आचरण करना चाहिए और फिर अपने बच्चों में ये संस्कार लाने चाहिए। और फिर जब योग्य हो जाए आपकी संतान, तो उसको एक प्रमाणिक योग्य आध्यात्मिक गुरु को सौंप देना चाहिए, ताकि आगे फिर उसका जीवन वो संभाल सके। और जैसे 5वां हम लोग और चर्चा कर चुके हैं, अपरिपक्व मानसिकता को त्यागना चाहिए, क्योंकि ये अपरिपक्व मानसिकता भक्तों में मतभेद उत्पन्न करती है। प्रेम से रहना चाहिए, एक परिवार की तरह। कई बार हमने सुना है कि श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसा घर बनाया है, परिवार तो दूर, घर, एक घर बनाया है जिसमें सारा जगत रह सकता है। तो अगर सारा जगत रह सकता है, क्या बेलगाम का यह छोटा सा भक्त समाज नहीं रह सकता? क्या हम लोग प्रेम से नहीं रह सकते? क्या हम लोग एक परिवार की तरह नहीं रह सकते? रहना चाहिए। एक जैसा परिवार होता है, कितना प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए हम लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, ऐसा प्रेम, ऐसा वातावरण इस श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में बनना चाहिए, कि जिसके द्वारा हर कोई एक दूसरे को एक अपना ही प्रिय माने, प्रिय जन माने। ऐसा नहीं लगे कि अरे वो तो ऐसा करता है, वो वैसा करता है, उसके घर में ऐसा है, इसके घर में वैसा है, इसका स्वभाव वैसा है। नहीं, सबके स्वभाव होते, क्या घर में हर लोगों के अलग अलग स्वभाव नहीं होते? क्या हम त्याग देते हैं लोगों को? तो इसीलिए एक ऐसा समाज जिसकी कल्पना, जिसकी रचना, कल्पना नहीं कहना चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने समाज बना दिया है, केवल कुछ समय है जो हमें अभी लगेगा उस समाज को देखने के लिए, बस। तो क्या हम ये छोटा सा प्रयास यहां नहीं कर सकते? क्या हम ये एक छोटी सी भेंट श्रील प्रभुपाद को नहीं दे सकते? श्रील प्रभुपाद ने कहा है, अगर आप मुझे प्रसन्न करना चाहते हैं तो आप एक दूसरे के साथ सहयोग से रहिए, यह मुझे सबसे ज्यादा प्रसन्न करता है, यह भगवान को भी प्रसन्न करता है। प्रचेतागण जब गए थे तपस्या करने के लिए, उन्होंने तपस्या की, भगवान प्रकट हुए और भगवान ने उनसे कहा कि मैं तुम्हारे एक गुण से बड़ा प्रसन्न हूं, और वो ये कि आप आपस में सहयोग से रहते हैं। तो ये गुण भगवान को प्रसन्न करता है, ये गुण श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करता है। तो हम लोगों को यहां बेलगाम में ये प्रयास करना चाहिए कि हम ये एक भेंट, ये एक उपहार श्रील प्रभुपाद को उनके आविर्भाव दिवस पर दें। 5 तारीख को श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस है और हमें ये भेंट उनको देने का प्रयास करना चाहिए। हमें प्रण लेना चाहिए कि हम प्रयास करेंगे कि बेलगाम का कम से कम भक्त समाज, जो यहां पर हम लोग श्री श्री राधा गोकुलानंद भक्त समाज है, वो एक परिवार की तरह रह सके। लेकिन ये प्रयास किसी एक व्यक्ति का कार्य नहीं है, ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति ने प्रण किया और वो पूरा हो जाएगा। ये सबका सहयोग है, आप सबको इसमें सहयोग करना चाहिए। हम सबको एक परिवार की तरह रहना चाहिए, आपस में सुख दुख बांटने चाहिए, तब हम लोग श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न कर सकेंगे, तब हम लोग एक दूसरे को सहयोग करते हुए भक्ति में आगे बढ़ सकेंगे। और अगर हम ये नहीं कर पाए तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हम श्रील प्रभुपाद के प्रति अपनी कृतज्ञता नहीं दर्शा पा रहे हैं। हमारे अभी भी जो असुर हैं, जो अनर्थ हैं, वो हमें रोक रहे हैं, वो बाधाएं हैं कि हम जाकर एक दूसरे भक्त के प्रति अपनी कृतज्ञता, अपना प्रेम प्रकट करें। एक बार हम मायापुर में थे तो वहां पर एक प्रवचन हो रहा था, वह एक क्लास चल रही थी और एक इस्कॉन के वरिष्ठ सन्यासी वो क्लास दे रहे थे और उन्होंने प्रश्न पूछा कि हम लोग एक साथ रहना चाहते हैं इस इस्कॉन संस्था में, लेकिन कितनी बार हम लोगों ने एक दूसरे के प्रति कुछ प्रेम को कृतज्ञता प्रकट की है, कुछ दर्शाया है कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूं, मैं आपसे प्रेम करता हूं, मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूं, मैं आपकी मित्रता चाहता हूं। कितनी बार हम लोगों ने कहा और उस समय हमने ये सोचा कि हाँ ये सत्य है, क्योंकि हम इस बात को कभी दर्शाते ही नहीं, कभी प्रकट नहीं करते, कभी एक दूसरे के समक्ष ये प्रकट नहीं करते, ये दिखलाते नहीं कि हम चाहते हैं कि एक साथ रहें। इसलिए हम लोगों को इस भक्त समाज को एक उदाहरण बनाना चाहिए सारे जगत के लिए। और ये हो सकता है, ऐसा मत मानिए कि बड़ी बड़ी चीजें कोई बड़ी बड़ी जगह में होती हैं और बड़े बड़े लोगों के द्वारा होती हैं, नहीं, दरअसल बड़ी बड़ी चीजें छोटे लोगों के द्वारा होती हैं, छोटे से स्थान में होती। ताजमहल किसने बनाया, किसने बनाया ताजमहल? शाहजहां ने नहीं बनाया है ताजमहल, वो खड़ा था क्या, ठोक रहा था क्या वहां पर? शाहजहां ने कुछ नहीं किया, एक पत्थर भी उठाकर इधर से उधर नहीं रखा। ताजमहल तो उन मजदूरों ने बनाया है, उन वर्कर्स ने बनाया है, गुणगान शाहजहां का है। तो इसलिए जो बड़ी बड़ी चीजें हैं वो होती, कि कोई भी बड़ी चीज ले लीजिए, किसने बनाई? हम कहते हैं ये फला फला ने बनाई, ये उसने बनाई, उसने नहीं बनाई है। तो इसी तरह ये मत मानिए कि हम लोग तो छोटे से शहर में हैं, अभी छोटे से भक्त हैं, अभी हम लोग कोई वरिष्ठ नहीं हुए हैं बड़े, कोई बात नहीं, हम ताजमहल तो नहीं बनाना है हमें, लेकिन हम एक ऐसा उदाहरण बना सकते हैं अगर हम सब संगठित हों, हम सब में एक प्रेम की भावना हो, सहयोग करने की भावना हो, तो हम लोग एक ऐसा उदाहरण जगत के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं कि जिसको देखकर लोग कहें कि हां ये श्रील प्रभुपाद चाहते हैं। ऐसा हमें करना चाहिए, एक ऐसा परिवार बनाना चाहिए, और उसके लिए हमें परिपक्व होना पड़ेगा, उसके लिए हमें अपनी ये छोटी छोटी जो सीमित मानसिकता है उसको छोड़ना होगा, उसको त्यागना होगा। हम जानते हैं कि कठिन है, आज इतना सुनने के बाद भी ऐसा नहीं है कि कल यहां पर फर्स्ट क्लास उदाहरण प्रस्तुत हो जाएगा, समय लगेगा, लेकिन प्रयास करना है। और आज ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि श्रील प्रभुपाद का आविर्भाव दिवस आ रहा है, और उस आविर्भाव दिवस पर हमें प्रण करना चाहिए कि हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे कि बेलगाम का ये भक्त समाज, श्री श्री राधा गोकुलानंद जी का ये भक्त समाज, ये एक परिवार की तरह प्रेम से रहे और सारे जगत को सिखलाए कि श्रील प्रभुपाद जो चाहते हैं वो संभव है। तो इसलिए आप सबसे हमारी ये विनती है, ये प्रार्थना है कि हम लोग अपने अपने मतभेदों को त्याग दें। किस में नहीं होते मतभेद? हम अपने अपने झगड़ों को त्यागें, अपने अपने अहंकारों को त्यागें। दरअसल सारे झगड़ों की जड़ है हमारा मिथ्या अहंकार, क्योंकि हम कुछ बनना चाहते हैं, हम प्रतिष्ठा चाहते हैं, हम पूजा चाहते हैं, हम लाभ चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि समाज में हमारा एक स्थान हो, हम कोई पीछे नहीं रहना चाहते, और इस कारण से सब तकलीफें आती हैं। इसलिए हम लोगों को ये प्रयास करना चाहिए, यहां पर जो हमारे वरिष्ठों को बड़ा पसंद होगा, जो हमारे वरिष्ठों को बड़ा प्रसन्न करने वाला होगा। हमने कई बार कई वरिष्ठ भक्तों से बातें की हैं, तो उन सब की यही इच्छा है, खास करके जो बेलगाम से संबंधित हैं, जो बेलगाम का हित चाहते हैं, ऐसे सभी भक्तों की ये इच्छा है कि बेलगाम का इतिहास धो दिया जाए, समाप्त हो जाए बेलगाम का इतिहास। कौन सा इतिहास? आप सब जानते हैं। तो उस इतिहास को समाप्त किया जाए, वो उसकी छाप भी हमारे मन में नहीं रहे, और हम लोग बड़े प्रेम से और सहयोग से एक दूसरे के साथ इस परिवार में रहें और फिर इसको आगे बढ़ाएं, और हम सब एक दूसरे के सहयोग से, चाहे हम कहीं भी किसी भी स्थान में किसी की शरण में भी रहें, क्योंकि यहाँ पर सभी भक्त हैं, इसीलिए हम इस बात को भी कह रहे हैं कि बेलगाम में ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर काफ़ी अलग अलग गुरुओं के शिष्य हैं, लेकिन वो बातें हमें केवल उस स्तर तक रखनी चाहिए। बेलगाम में हम सब एक समान हैं, हमें ये नहीं मानना चाहिए कि हम फला फला भक्त से संबंधित हैं, हम उस मंदिर से संबंधित हैं, नहीं, हम केवल श्रील प्रभुपाद से संबंधित हैं, और श्रील प्रभुपाद से हमें संबंध जोड़ने वाले कोई हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें एक समान रहना है, एक परिवार की तरह रहना है, कोई झगड़ा नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई क्या कहते हैं, एक दूसरे के प्रति निंदा नहीं। सोचिए कितना सुंदर वो भक्त समाज होगा, कितना आनंद देने वाला भक्त समाज होगा, कितना प्रेरणादायक दूसरों के लिए वो भक्त समाज होगा। आज भी है, ऐसा नहीं है कि हमारे बेलगाम का भक्त समाज बहुत नीचे गिरा हुआ है इसलिए हम इतना कह रहे हैं, नहीं, आज भी ये भक्त समाज दूसरों को प्रेरणा देता है। जब लोग आते हैं और देखते हैं कि रथ यात्रा में हजारों हजारों लोग आ रहे हैं, लेकिन उनकी सेवा करने के लिए सारे भक्त लगे हुए हैं, सब सेवा कर रहे हैं, कोई प्रसाद बना रहे हैं, कोई वैष्णवों की सेवा कर रहे हैं, कोई दूसरी सेवाओं में लगे हैं, तो ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। कई भक्तों ने हमसे कहा है कि बड़ा आश्चर्य है कि आप इतना बड़े, इतने पैमाने पर रथ यात्रा करते हैं और सारी रथ यात्रा भक्तों के द्वारा की जाती है, तो ये अच्छा है, लेकिन इससे हमें गर्वित नहीं हो जाना है कि हाँ बस हो गया है, नहीं, इसको और बढ़ाना है। एक ऐसा उदाहरण कि जिसको सारा जगत देखे और जिसके द्वारा हमारे इन प्रयासों से हमारे जो वरिष्ठ हैं, हमारे जो गुरुजन हैं, उनको हम पर अभिमान होना चाहिए कि हाँ इन्होंने कुछ ऐसा किया जो श्रील प्रभुपाद को प्रसन्न करे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो आज का ये सत्र, इस वर्ष का ये सत्र यहाँ पर समाप्त हो रहा है। हम लोग ज़्यादा असुरों का वध नहीं कर पाए, शक्ति नहीं है, भगवान तो सुबह शाम में कर देते हैं, हम लोगों को थोड़ा समय लगता है, तो इसीलिए हम बड़े आभारी हैं आप सबके कि आप इतने हफ्तों तक हर रोज, हर फ्राइडे सैटरडे यहाँ पर नियम से आते रहे। जब हमने इसके बारे में सोचा तो हमें लगा था इतने सारे भक्त पहले दूसरे प्रवचन सुनकर फिर चले जाएंगे, क्योंकि वो जब शुरू होगा अनर्थ और चेतना, तो शायद लोगों को इतना रुचि नहीं आएगी, कथा तो नहीं है, लेकिन आप लोगों की रुचि देखकर हमें बड़ा उत्साह मिला, तो इसलिए आप सबके बड़े आभारी हैं जिन भक्तों ने इस सत्र के लिए मदद की है, उनके भी हम बड़े आभारी हैं। विशेष करके कुछ भक्त जिन्होंने इन पूरे सत्र का प्रसादम, एक भक्त ने स्पॉन्सर किया, वो अपना नाम नहीं बताना चाहते हैं, तो उनके भी हम बड़े आभारी हैं। वो इस समय यहाँ नहीं हैं, लेकिन हम उनके भी आभारी हैं। साथ साथ और भी भक्त जिन्होंने जिस भी रूप में, जैसे यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, व्यवस्था होती है, स्क्रीन लगाना, प्रोजेक्टर लगाना और फिर साउंड सिस्टम लगाना, बहुत सारी चीज़ों की व्यवस्था करनी होती है, तो हम उन सब के भी आभारी हैं कि उनकी वजह से हम थोड़ी सी भगवान की सेवा कर पाए। और आप सबके भी बड़े आभारी हैं कि आप लोगों ने, और जैसे अभी वो प्रभु जी के हाथ में नोट्स हैं, तो नोट्स देखकर ध्यान आया कि एक भक्त ने बड़ा मेहनत करके नोट्स लिखे हैं, हम तो नहीं लिख पाए, ऐसा मत जानिएगा कि हमने लिखे हैं, तो उन्होंने बड़ी मेहनत की है, तो उनके भी बड़े आभारी हैं। क्योंकि बड़ा, कल हम बता रहे थे कि बड़ा इंग्लिश में कहते बोरिंग काम है वो, सुनते रहना, लिखते रहना। तो ऐसे जितने भी भक्तों ने जो भी सेवाएं की हैं, उसके सब, उन सब के हम आभारी हैं। और अब जैसे हमने कल बतलाया था, हम आप लोगों से कुछ चाहते हैं, तो हम ये चाहते हैं कि कुछ भक्त आप में से इस सत्र के अनुभव नहीं बताएं। हम ये नहीं सुनना चाहते कि आपके अनुभव हैं, हम ये सुनना चाहते हैं कि इस सत्र से आपने क्या सीखा और आप उसको कैसे अपने जीवन में उतारेंगे। तो हम विनती करते हैं कुछ भक्तों से, वो कृपया आगे आएं एक एक करके, थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, हमारे पास 10-15 मिनट का समय है, और कृपया वो कुछ कहें। लाइट्स ऑन कर दीजिए प्लीज़, और माइक दूसरा दीजिए। प्रभु, हमारे इस्कॉन भक्त समाज के वरिष्ठ सदस्य, माइक दीजिए। ये ऑफ कर दें, प्रोजेक्टर ऑफ कर दें।
हरे कृष्णा।
हाँ जी, बंद कर रहे हैं, कर दिया, बंद कर, बंद किया उसको। आप इधर आ जाइए ना तब तक।
हरे कृष्णा। अपना अनुभव बताने से पहले कुछ दो शब्द कहना चाहूंगा कि अतुल कृष्ण प्रभु जी ने जो ये सत्र,
केवल अनुभव बताने हैं यहाँ पर,
केवल दो शब्द में, जो हमें ज्ञान प्रदान किया है उसमें मेरा अनुभव भी आता है कि भगवान की दिव्य लीलाओं का श्रवण करवाया और जो अस्त्रों का वध करवाया, जो हमारे अंदर बैठे हैं, ठीक है, पूरे नहीं हुए, जितने हुए उतने बहुत हैं, यदि हम उनका पालन करेंगे कि हमारे अंदर अनर्थ किस प्रकार से जा सकते हैं, तो उसमें जो आज का विशेष दिवस है, जो 5 संस्कारों का विवरण दिया गया है, उससे मैंने तो बहुत कुछ ग्रहण किया है और मैं आशा करता हूँ कि भगवान की प्रेरणा मिले और भक्तों की प्रेरणा मिले तो उसको जो है मैं अपने जीवन में पूरी तरह उतारूं। बहुत अच्छे संस्कार बताए हैं और वास्तव में जब हम इन 5 संस्कारों का पालन करेंगे तो हम भक्ति में बहुत आगे जा सकते हैं। तो इसलिए हम सब अतुल कृष्ण प्रभु जी के बहुत आभारी हैं जिन्होंने इतना हमें ज्ञान प्रदान किया है। तो सभी भक्तों से निवेदन है, कृपया 3 बार हरि बोल बोलकर उनका आभार प्रदर्शित करें। हरे कृष्ण। और जो आना चाहते हैं भक्त कृपया आगे आए।
हरे कृष्ण।
कृष्ण प्रभु जी का बहुत आभारी हूँ जिन्होंने एक हमको चेतना दी। हम अभी तक ये भूतनाभ, सट्टासुरभ, ये रक्षासुरभ, इनकी लीलाएं हमेशा सुनते थे और इनके बारे में जानते थे कि ये भगवान कृष्ण ने किया। उनसे हमको सिद्ध होता था भगवान हमारे पूर्ण पूर्ण भगवान हैं, बालक ही नहीं है कि छोटी सी अवस्था में उन्होंने पूर्णिमा को वध कर दिया। 6 दिन के थे तभी, लेकिन इन्होंने जो उसका तात्पर्य बताया वो बहुत महत्वपूर्ण था। सबसे पहले इन्होंने जो भूतनावत बताया कि कपटी गुरु, तो हम लोग प्रभुपाद जी ने बार बार इसी चीज को बोला है कि प्रमाणिक गुरु के शरण में जाना चाहिए। तो इसी तरह से कपटी गुरु का इतना विस्तार से इन्होंने वर्णन किया जो शायद हम लोगों ने कभी सुना भी नहीं था और पढ़ा भी नहीं था, और उसके बारे में हमने ज्ञान प्राप्त किया। दूसरा इन्होंने सट्टासुर, सट्टासुर को उन्होंने बताया था भावग्राही और सारग्राही, ये तीन उन्होंने उदाहरण दिखाए थे कि एक तरह से किस तरह से वजन उसका होता है। तो सारग्राही के बारे में बार बार, अभी दिवंगत प्रभु जी नहीं आए थे, उन्होंने भी सारग्राही के बारे में बहुत बताया कि हम लोगों को सार ग्रहण करना चाहिए। तो इस तरह, और तीसरा आज भक्षासुर के बारे में बताया। तो आज उन्होंने जैसे 5 संस्कारों के बारे में बताया, तो हमें तो अभी 5 संस्कार है ही नहीं, तो हम तो अभी भक्ति के मार्ग में अभी चल ही नहीं पाए हैं अभी। तो आज से पता चलता है कि हम लोग तो अभी घोटालियों में नहीं चल पा रहे हैं कि भक्ति में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, जिसका हमको पूर्ण ज्ञान भी नहीं था। तो हमको अभी चेष्टा करनी पड़ेगी, जो इन्होंने बताया कि मार्गदर्शन हुआ हमारे लिए कि हमको ब्राह्मण दीक्षा की तरफ भी जाना है और दीक्षा भी लेनी है, ब्राह्मण दीक्षा जाना है। हम तो बहुत मार्ग आगे है भक्ति में हम लोगों के लिए। तो इस तरह का जो हमारे गुरुओं ने, हमारे जो परंपरा के भक्ति विनोद ठाकुर उन्होंने जो, और रूप गोस्वामी उन्होंने जो लिखा, उनका इन्होंने हमको सार ग्रहण कराया कि ऐसा आपको करना चाहिए। जब तक ये हमारे इस तरह से शिक्षा गुरु हमको इस तरह की बातें नहीं बताएं, तो हमको पता ही नहीं चलेगा हम कहाँ हैं। तो ये आज इस तरह का जो सत्र होता है बहुत लाभदायक हुआ, बहुत आनंददायक हुआ, और हमारा मार्गदर्शन प्रदर्शित कर रहा है कि खाली हमको भजन और कीर्तन करने से ही नहीं होगा, हमको ये सब करने से ही हमारी भक्ति में एक आगे प्रशस्त मार्ग, शुद्ध भक्त बनने का मार्ग मिलेगा। हरे कृष्ण। आप द्वारा अतुल प्रभु जी और सभी भक्तों का, जिन्होंने बड़ी शांति से शायद सुना होगा, उसके लिए बहुत आभारी हूँ कि मेरे को भी इस तरह सौभाग्य मिला कि मैंने क्या सब सुना। धन्यवाद।
और कोई बात कुछ बोलना चाहते हैं? नंदन नंदन प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं? है ये प्रभु जी।
हरे कृष्णा। एक्चुअली भक्ति का जो विषय है एक समुद्र की तरह है, और इसमें इतना सब कुछ है कि हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट मुझे याद आ रहा है जो प्रभु जी ने बताया था कि वैष्णव बनने के लिए जो 3 गुण होते हैं, क्या एक व्यक्ति में अगर ये 3 गुण आते हैं तो कैसे वैष्णव में परिवर्तित हो जाता है? तो थे नम्रता, निस्वार्थ भाव और निर्भयता। तो अगर हम सब अपने आप को इस तरह से कहते कि हम वैष्णव बन रहे हैं या हम वैष्णव हैं, तो ये 3 गुणों को अगर हम लोग अपने जीवन में उतारेंगे तो हम एक परफेक्ट वैष्णव बन सकते हैं। और वैष्णव बनकर हम लोग, जो प्रभुपाद ने जो हमें मार्ग दिखाया है भक्ति का और उनके मिशन में, हम लोग अपनी सेवा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो हमें इन 3 गुणों को अपने जीवन में उतारना है धीरे धीरे करके, ताकि हम एक अच्छे वैष्णव बन सके और प्रभुपाद के मिशन में अच्छे से सेवा कर सके।
और कोई कुछ बोलना चाहता? गोता जी पीछे बैठे हुए हैं, बोल रहे, सोच रहे कब उठूं मैं। खैर उनको उठा देते हैं। आपको क्या अच्छा लगा वही बोलिएगा।
हरे कृष्णा। मुझे तो जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, सबसे अच्छा ये लगा कि आदमी को विनम्र होना चाहिए। मुझ में बहुत क्रोध है, मुझे बहुत क्रोध आता है। तो मैं प्रभु जी का लेक्चर सुनने आ रहा था, तो फर्स्ट गेट पे जैसे बंद थी गाड़ी आ रही थी, तो मैं क्रॉस करके गाड़ी चला के आ रहा, तो आगे से एक साइकिल वाला क्रॉस किया। वो थोड़ा अगर कुछ मैं रैश पे ड्राइविंग में होता तो शायद एक्सीडेंट हो जाता, लेकिन मैं धीरे चला रहा था, गलती साइकिल वाले की थी। तो मुझे क्रोध बहुत आया, वो साइकिल वाला वो उतर के मेरी तरफ आने लगा। मैंने कहा भैया गलती मेरी हो गई। तो मैंने कहा कि मैं प्रभु जी का लेक्चर सुनने जा रहा हूँ, और कल ही उन्होंने बताया कि आदमी को नर्म होना चाहिए। तो मैंने कहा भाई मेरी गलती है, तुम जाओ भैया, क्या अभी आज कल तो नरमी के बारे में सुना, मैं कुछ सुन के आ रहा हूँ। तो क्या ये प्रत्यक्ष अनुभव हुआ मुझे, और वाकई के आदमी अगर विनम्र रहे ना तो अहंकार भी कम होता है। नरमी एक ऐसा गुण है इंसान के अंदर कि जितना इंसान अंदर से नर्म होता है ना, उतना ही उसका व्यक्तित्व बाहर से भी निखर के आता है। क्रोधी आदमी को देखो, ब्लड प्रेशर भी हाई रहता है, उसका चेहरा भी तमतमाया रहता है, 24 घंटे टेंशन में रहता है। जो नरम आदमी होता है वो हमेशा हंसमुख रहता है, जो अंदर भी शांत है तो बाहर भी शांत है, अंदर भी गर्मी है तो बाहर भी गर्मी है। और गर्मी क्या होती है, आग तो सबको जला के राख कर देती है, आग का तो काम ही राख कर देना है। वो नर्म है या शांति है, ये आपको बुझा देती है। तो मुझे तो सबसे बड़ा ये अनुभव हुआ, और इसके लिए मैं तो प्रभु जी का बड़ा आभारी हूं कि इस लेक्चर में आके मुझे ये सबसे ज्यादा हुआ कि मेरा क्रोध जो है पूरा तो नहीं गया। ये तो मैं नहीं कह सकता कि झूठ बोलना पाप है, पूरा तो नहीं मैं कह सकता, कि मैं ये इनको इत्मीनान दिला दूंगा कि मैं कोशिश करूंगा मैं क्रोध ना करूं, लेकिन बहुत कुछ मेरा चला गया, जो थोड़ा बहुत बाकी है वो भी शायद चला जाएगा। तो ये मैंने सीखा इनके लेक्चर से यहाँ आके, क्योंकि जब तक संतों का संग नहीं करेंगे, भक्तों का संग नहीं करेंगे, ये सब बातें आएंगी नहीं। और इंसान जो है इन सब चीजों को त्याग के, ये भी एक असुरी है, ये क्रोध भी एक असुरी है, जो थोड़ा बहुत अगर निकल गया, इनके लिए मैं इनका शुक्र गुजार हूँ। और आगे के सत्र में भी जब एक साल बाद हम लोग कुछ सुनेंगे तो कुछ और भी समझ में आएगा, वो भी मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। जय प्रभु। थैंक यू। हरे कृष्ण। तुम जानते थे कि गुप्ता जी ऐसा ही कुछ कहेंगे, इसीलिए उनको बुलाया था। हमें ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि गुप्ता जी क्रोध करते हैं। यहाँ पर तो हमेशा हंसते रहते हैं, हंसाते रहते हैं लोगों को, लेकिन खैर अच्छा है ऐसे अनुभव है। और कोई बोलना चाहते हैं जो रेगुलर आ रहे थे इस सत्र में? कड़वलकर प्रभु, कुछ कोई अनुभव? कोई अनुभव नहीं, आप बोले अक्रूरनाथ प्रभु। और कोई बोलना चाहते हैं? माता जीओ में कोई? यशोदा में माता जी नहीं है? हाँ, ये माइक देना जरा माता जी, माइक है। हाँ बोल रहे हैं।
अरे ऐसा वैष्णव ने जो बोला है, मैं तो कुछ बोल भी नहीं सकती कि मेरे में इतने अवगुण है और इतने असुर हैं कि मैं कुछ बोल भी नहीं सकती कि मैं क्या करूं।
बोलने से निकल जाएंगे।
कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ जो असुर आपने बताया वो धीरे धीरे निकल जाए। बस आपसे ये वैष्णव से प्रार्थना है,
और कोई माता जी में बोलना चाहते हैं? नहीं? सिंधु प्रिय माता जी को दीजिए। मराठी मध्ये आता आपण ऐकणार। बोलिए बोलिए। आ रहा माइक, आ रहा नहीं नहीं माइक पे बोले, माइक पे बोले सगळ्यांना, क्या बोलते हैं? हाँ हो मराठी में बोली मत बोली बोली माइक वर प्रयत्न करा तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मत माइक पे बोले माजी माइक ऑन कीज कर दी हाँ बोलिए लेक्चर कोई ट्रांसलेट करके बोलिए प्रभुपाद से प्रार्थना ठीक है और कोई माता जी कुछ बोलना चाहते हैं हाँ कौशल्य माता जी अरे हैं यस कौशल्य माता जी को दीजिए सॉरी मैंने देखा नहीं इस तरफ माता जी पण मराठी मध्ये बोलणार काय तयारी कर रहे आप बोलिए बोलिए ना आपको अच्छा क्या लगा वो बताइए इसमें
मैंने तो आधे सुने
तो आधा अच्छा क्या लगा वो बताइए
मनुष्य में जो अहंकार रहता है ना वही उसका पर पतन का कारण होता है तो दामोदर लीला में भी बताया था कि नंद कुरु उपन के लड़के थे तो अहंकार हो गया था इसलिए उनका पतन हो गया अहंकार किसी को भी अहंकार नहीं होना चाहिए
एक्चुअली हमारे अंदर बहुत अहंकार है इसलिए बार बार हम अहंकार पर बोलते हैं कि शायद थोड़ा कम हो जाए तो आप लोग सब प्रार्थना कीजिए कि ये जो थोड़ा अहंकार बहुत सारा अहंकार है वो थोड़ा कम हो जाए हमारे हृदय का ठीक है तो समय भी हो गया है और कोई कुछ बोलना वैसे भी समय है 5-10 मिनट कोई भी कुछ बोलना चाहते हो तो प्रभु जीओ में भी और कोई अगर रह गए हों कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल रहे वाले हैं माता जी कोई प्रभु जी में कोई कुछ बोलना चाहते हैं मोहन प्रभु को माइक दीजिए ये माइक शदी वाला दे दो खराब हो रहा है इसको ऑन करके दीजिए इसको ऑन कीजिए
हरे कृष्णा
हरे कृष्ण
प्रभु का
वो हो गया धन्यवाद हो गया अभी आगे बढ़ते
हैं इतने सुंदर सत्र हम लोग कितने अच्छी तरह से मार्गदर्शन किया प्रभु जी जो सत्ता शुल्क बताया था उसमें जैसे हमारे अंदर तीन सत्ता शुल्क को चार भागों में बताया था कि कैसे हमारे अंदर वो है तो पहला जो बताया था कि हम जो निंदा करते हैं लोगों की और लोगों के अंदर दोष ढूंढते हैं और अपना प्रभुत्व जमाने का जो हमारे अंदर एक जो एक भावना है वो इन चीजों को ये तीन चीजें पहले शक्तिशोर के बताया था तो इन तीन चीजों को हमारे अंदर जो बहुत गहनतम उनसे अंदर भरी पड़ी है तो इसको भी निकालना मतलब जब प्रभु जी ने बताया तो ये मेरे को लगा हाँ ये हमारे अंदर बहुत बुरी तरीके से भरी पड़ी तो मैं अतुल कृष्ण प्रभु से अर्चना करता हूँ कि कृपया हमारे लिए प्रार्थना करें कि इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से फॉलो करके और सट्टा शुल्क को मार सकें और जो हम गधे की तरह काम कर रहे हैं सिर्फ बाहर रही अपने जीवन यापन के लिए, तो अगर उसमें से भी हम कुछ सार को ग्रहण करके, जैसे प्रभु जी ने बताया इतने सुंदर तरीके से कि प्रभुपाद के मिशन में सेवा कर सके, हम इसलिए यही सब ये लेक्चर मैंने अटेंड किया था, तो इसको पूरी तरह से
थैंक यू। तो हम लोगों को बनना चाहिए भारवाही से, भार को छोड़कर सारग्राही बनना चाहिए। और कोई कुछ कहना चाहते हैं? यस, माइक दीजिए। नो क्वेश्चंस, अभी केवल आप लोग बोल रहे हैं, हमने सुनना है। माता जी को माइक दीजिए। बाद में प्रश्न, बाद में।
कई सारे प्रश्नों का निवारण दिया है आपने, कई सारी शंकाएं थी। सूडो डिवोटी के बारे में पढ़ा था, लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, वो उतना वर्णन में बताया आपने। तो मन कैसे क्यों ले जाता है, उसे कई सारे शंकाओं का निवारण दिया।
थैंक यू। ठीक है, फिर और कोई कुछ? सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अभी प्रयास करेंगे कि ऐसे सत्र, और ये तो नहीं, ये तो अगले वर्ष करेंगे, लेकिन बीच में और भी बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिन पर हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। आज सुबह भी जब हम चर्चा कर रहे थे रुक्मिणी हरण की, तो वो पूरा तो नहीं हो पाया, वो भी शायद बाद में कभी करेंगे। लेकिन आप में से जो लोग आए थे, कितने लोग आज सुबह आए थे? अच्छा, तो आप लोगों ने देखा होगा कि रुक्मिणी देवी का पत्र देखने में साधारण प्रेम पत्र लग रहा था कि आप आइए और मेरा हरण करके ले जाइए, लेकिन कितना सुंदर ज्ञान साधक के लिए उसमें दिया गया था। तो ऐसे ही हम प्रयास करेंगे दो तीन महीने में एक बार ऐसे कुछ सत्र यहाँ पर करें, जिससे भागवत के जो श्लोक हैं, जो प्रार्थनाएं हैं, या जो अन्य चीज़ें हैं, उसके गूढ़ रहस्य को हम लोग समझ सकें जो आचार्यों ने हमें दे रखे हैं। हमने ये जो सब आपको दिया, ये सब पहले से आचार्यों ने दिया हुआ है। भक्ति विनोद ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, शिला प्रभुपाद, लोगों ने पहले से दिया हुआ है। हमने कोई नई चीज़ नहीं दी है, हमने केवल उसको दोहराया है। तो इसलिए आगे भी प्रयास करेंगे कि इन चीज़ों को हम, शिला प्रभुपाद की वाणी को, अन्य आचार्यों की वाणी को आप तक पहुंचा सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो आज दर्शन नहीं है भगवान के, क्योंकि वहाँ पर कुछ पेंटिंग चल रही है, इसलिए 5 मिनट कीर्तन करके फिर इस सत्र को समाप्त करेंगे। तो कृपया सब लोग कीर्तन में बड़े उत्साह के साथ भाग लीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय राधा गोकुलानंद राधा गोकुलानंद राधे जय जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद राध की। हरे कृष्ण। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हाँ, सब लोग प्रसाद लेकर जाइएगा, प्रसाद की व्यवस्था है।